आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार रिशाली जैन के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने लिबरल और नेशनल पार्टी से अपील की है कि वे गठबंधन में सुधार के लिए मिलकर काम करें। नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड ने सोमवार 20 मई को लगभग 40 वर्षों में पहली बार पार्टी को गठबंधन से बाहर निकालने की घोषणा की है। पार्टी ने इस फैसले के पीछे नीति संबंधी मतभेदों को कारण बताया है, जबकि लिबरल पार्टी का कहना है कि पूर्व सहयोगियों द्वारा कैबिनेट एकजुटता को तोड़ने का दबाव असली बाधा था। गौरतलब है कि जब गठबंधन पिछली बार टूटा था उस समय जॉन हावर्ड लिबरल पार्टी के नेता थे। उन्होंने स्काई न्यूज से कहा कि दोनों पार्टियों को इस समय एक दूसरे की जरूरत है। इस पर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने कहा है कि गठबंधन से अलग होने के बाद नेशनल पार्टी को अतिरिक्त स्टाफ देना अनुचित होगा। चूंकि लिबरल पार्टी अब भी आधिकारिक विपक्ष है, नेशनल्स के पास अब कोई शैडो मंत्रालय नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि कई सांसद अतिरिक्त स्टाफ और 25% वेतन बोनस जैसे लाभ खो देंगे। नेशनल पार्टी को कितने स्टाफ सदस्य आवंटित किए जाएंगे, इसका अंतिम फैसला प्रधानमंत्री एल्बनीजी करेंगे। अब बात प्रथम राष्ट्र समुदाय की। नए अपराध आंकड़ों से पता चलता है कि न्यू साउथ वेल्स की जेलों की आबादी 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसमें प्रथम राष्ट्र समुदाय की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। राज्य के ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब न्यू साउथ वेल्स की जेलों में बंद वयस्क अबोरिजिनल लोगों की संख्या कुल कैदी आबादी का 32% है, जबकि वे राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 3.5% से भी कम हिस्सा हैं। पिछले 4 महीनों में अबोरिजिनल कैदियों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई है, जबकि गैर इंडिजिनस कैदियों की संख्या में केवल 4% का इजाफा देखा गया है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर का कहना है कि सरकार सार्वजनिक विश्वास को लेकर दबाव में है, क्योंकि एक बड़े ट्रेन नेटवर्क में आई खराबी के चलते यात्रियों को लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर 20 मई एक ट्रेन के ऊपर लटक रही लाइव वायर टकरा गई, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसके बाद लोगों से सिडनी में गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। राज्य सरकार ने सोमवार 26 मई को सार्वजनिक परिवहन को किराया मुक्त रखने की घोषणा की है और सिडनी की ट्रेनों के रखरखाव और समयबद्धता की स्वतंत्र समीक्षा शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। मौसम की खराबी भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। न्यू साउथ वेल्स के कुछ हिस्सों में बाढ़ से बचाव कार्य के लिए रक्षा बल को तैनात किया गया है और अब तक 1600 से अधिक राज्य आपातकालीन स्वयंसेवकों के साथ मिलकर छतों से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज ये खबर लिखे जाने तक भी 150 से अधिक बचाव अभियानों को अंजाम दिया जा चुका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वे इजरायली कैबिनेट मंत्रियों इतमार बेन गवीर और बेजलेल स्मोटरिच पर प्रतिबंध लगाएं। संस्था का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने हिंसा भड़काने, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में संलिप्तता और अवैध यहूदी बस्तियों व फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए जिम्मेदार होने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा दिए गए बयान इस बात को मजबूती देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब भी ठोस कार्यवाही करने का अवसर है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने कहा है कि गाजा को लेकर स्मोटरिच के बयान चरमपंथ की श्रेणी में आते हैं। वहीं इसराइल के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन पर इसराइल विरोधी जुनून का आरोप लगाया है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यदि इसराइल तुरंत और बिना किसी रोक टोक के गाजा में सहायता नहीं पहुंचने देता तो अगले 2 दिनों में 14,000 शिशुओं की भूख से मृत्यु हो सकती है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को लेकर बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है। उन्होंने इसे एक गैर न्यायिक प्रक्रिया से वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास बताया है। वहीं केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की है कि बहस को तीन मुख्य मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जिनमें वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी जमीन की पहचान से जुड़ा प्रावधान शामिल है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत पाने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट मामला पेश करना होगा। इसी के साथ 21 मई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।